بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت کرمانک 32, 33 اور 34 کی تلاوت اور انواد سنیں گے ایران کے پرکھیات قاری ابو القاسمی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتین کرپا شیل اور دیاوان ہے۔ ہے پیغمبر کی پتنیوں، تم سامان محلاؤں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، یدی تم اللہ کا ڈر رکھو تو کسی ویکتی سے کومل سور میں بات نہ کرو کہ وہ ویکتی جس کے من میں روگ ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور سدیو بھلی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور پچھلے اگیانتا کے کال کی بھانتی بن ٹھن کر باہر نہ نکلو۔ نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے پیغمبر کا آگیا پالن کرو۔ ہے پیغمبر کے پریجنوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس پرکار کا پوتر رکھے جس پرکار پوتر رہنے کا حق ہے۔ اور ہے پیغمبر کی پتنیوں، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور تتو درشتا کی جن باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو کہ نشچے ہی اللہ اتینت سوکشم درشی اور خبر رکھنے والا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستو، آپ ہمارے پرسارن کو شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ برابر 9620 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@wsirib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir/hi۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 9098903506542۔ دوستو، آج رویوار ہے، بہمن کی 9 اور جنوری کی 29 تاریخ ہے۔ ساتھ ہی آج اسلامی کیلنڈر کے 7ویں مہینے رجب کی 7 تاریخ ہے۔ آج کی ہماری سبھا کے کارکنوں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ خبر سنیں گے اور اس کے بعد آپ کی سیوا میں کارکرم انمول باتیں پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ راجنیتک چرچا کو سنیں گے، اور اس کے بعد آپ کی سیوا میں کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار پیش کیا جائے گا، اور آج کی سبھا کے انت میں آپ کی سیوا میں جو کارکرم پیش کیا جائے گا وہ ہوگا آج کل۔ تو دوستوں، کارکرم کے انوسار اب آپ ریڈیو ہندی تہران سے راشٹری اور انتراشٹری سماچار رویش زیدی اور مریم مہردادی سے سنیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ اسفان ستھ رکشا ورک شاپ کمپلیکس پر ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا، ایرانی رکشا منترالے۔ ایران میں شکتیشالی بھوکمپ، 3 ہتاہت، 973 گھائل۔ ایران پہنچے قطر کے ودیش منتری، حسین امیر عبداللہیان نے کیا سواگت، کئی اہم مدوں پر ہوئی چرچا۔ فلسطینیوں کی جوابی کارروائی کے مقابلے کے لیے نیتن یاہو کی خطرناک یوجنا۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
ایران کے رکشا منترالے کا کہنا ہے کہ اس کی ایئر ڈیفینس یونٹ نے اصفہان استھت ایک سین ورکشاپ پر ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اصفہان استھت رکشا منترالے کے ایک ادیوگ پریسر میں شنیوار دیر رات ایک وسفوٹ کی سوچنا ملنے کے بعد رویوار کو تڑکے منترالے نے یہ بیان جاری کیا۔ رکشا منترالے کا کہنا ہے کہ اس کے ایک ورکشاپ کمپلیکس پر کئی مائکرو ایریل ویکلز ایم اے وی کے سے حملہ کیا گیا، لیکن کمپلیکس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے حملے کو سفلتا پوروک ناکام بنا دیا۔ بیان کے مطابق یہ حملہ شنیوار رات 11:30 پر کیا گیا تھا۔ ایرانی رکشا منترالے کے مطابق ایک ڈرون کو ایئر ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا، جبکہ 2 ان رکشاتمک جال میں پھنس کر دھماکے سے اڑ گئے۔ بیان میں الیکھ کیا گیا ہے کہ اس حملے میں کوئی ہتاحت نہیں ہوا ہے، لیکن ورکشاپ کی چھت کو معمولی سا نقصان پہنچا ہے۔ منترالے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے اندھا دھن حملوں سے دیش کی پرگتی پربھاوت ہونے والی نہیں ہے۔
شنیوار رات ایران کے اتر پشچم میں آئے شمع کی جگہ ایران میں شکتیشالی بھوکمپ میں 3 لوگوں کی موت اور 973 گھائل ہو گئے ہیں۔ شنیوار رات ایران کے اتر پشچم میں آئے شکتیشالی بھوکمپ میں کم سے کم 3 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 973 لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ بھوکمپ میں سب سے زیادہ نقصان آذربائیجان غربی پرانت کے خوئی شہر کو پہنچا ہے، جہاں بھوکمپ کی تیورتا रिएक्टर पैमाने पर 5.9 मापी गई। इससे पहले ईरान की रेड क्रिसेंट रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख सादिक महमूदी ने घायलों की संख्या 973 बताई। इस भूकंप का केंद्र खुई शहर से 6 किलोमीटर फासले पर और 7 किलोमीटर गहराई में था, जबकि ये उरुमिये शहर से 117 किलोमीटर और तबरेज शहर से 134 किलोमीटर दूर था। खुई शहर में घरों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचने के समाचार हैं। स्थानीय समय के अनुसार शनिवार की रात 9:44 पर आने वाले इस भूकंप में 70 गांवों को नुकसान पहुंचा है।
कतर के विदेश मंत्री रविवार को इस्लामी गणराज्य ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान आल सानी रविवार को आधिकारिक दौरे पर तेहरान पहुंचे हैं। इस मौके पर इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने विदेश मंत्रालय कार्यालय में उनका स्वागत किया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस मुलाकात में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। कतर के विदेश मंत्री आल सानी ने ईरानी राष्ट्रपति और कतर नरेश के बीच वार्ताओं के अनेक चरणों की ओर इशारा करते हुए इनमें दोनों देशों के बीच तय पाने वाले समझौतों को लागू किए जाने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की और आशा जताई कि जल्द ही दोनों देशों के बीच संबंधों के विस्तार और विकास के लिए कई अन्य समझौते भी किए जाएंगे। बता दें कि कतर के विदेश मंत्री की ईरान यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान और कतर के विदेश मंत्रियों ने पिछले महीनों में 3 बार दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास और क्षेत्रीय मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कतर के विदेश मंत्री अपनी तेहरान यात्रा के दौरान विदेश मंत्री से मिलने के अलावा कई अन्य उच्च ईरानी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।
ज़ायनी शासन ने अपने नागरिकों को हथियार रखने की अनुमति देने की योजना का ऐलान करके फिलिस्तीन में स्थिति को पहले से भी अधिक संकटमय बना दिया है। इसराइल के कब्जे वाले पूर्वी अलकुद्स में फिलिस्तीनियों की हालिया जवाबी कार्रवाइयों के परिप्रेक्ष्य में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद शनिवार रात देर गए एक घोषणा की। नेतन्याहू की अब तक की सबसे कट्टर दक्षिणपंथी कैबिनेट की मीटिंग ज़ायनियों को हथियार दिए जाने के अलावा जवाबी कार्रवाई करने वाले फिलिस्तीनियों के घरों को जब्त करने, उनके परिजनों को गिरफ्तार करने और उन्हें बेघर कर देने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। हालांकि अवैध कब्जा किए गए फिलिस्तीनी इलाकों में रहने वाले हजारों ज़ायनी नागरिकों के पास पहले से ही हथियार हैं, लेकिन अब ज़ायनी शासन अधिक लोगों को सशस्त्र करने की योजना बना रहा है।
फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोधी आंदोलन जिहाद इस्लामी के राजनीतिक कार्यालय के एक सदस्य का कहना है कि इसराइलियों के सशस्त्र होने से फिलिस्तीनियों को कोई भय नहीं है। गौरतलब है कि शनिवार को नेतन्याहू की कैबिनेट की मीटिंग में ज़ायोनियों को हथियार दिए जाने के अलावा प्रतिरोधी कार्रवाई करने वाले फिलिस्तीनियों के घरों को जब्त करने, उनके परिजनों को गिरफ्तार करने और उन्हें बेघर कर देने जैसे मुद्दों की योजना बनाई गई है। जिहाद इस्लामी के सदस्य मोहम्मद अल हिंदी ने रविवार को ज़ायोनी शासन की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी इसराइल के अत्याचारों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और भविष्य में भी संघर्ष और प्रतिरोध जारी रखेंगे। इसराइली सैनिक 2023 की शुरुआत से अब तक यानी एक महीने से भी कम की अवधि में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को शहीद कर चुके हैं। शुक्रवार को जवाबी कार्रवाई करते हुए एक फिलिस्तीनी युवक ने पूर्वी अलकुद्स स्थित सिनेगॉग में शहादत प्रेमी कार्रवाई करके 8 ज़ायोनियों को मौत के घाट उतार दिया था।
मुंबई में शनिवार को प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में छात्रों ने गुजरात 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। मोदी सरकार द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने और देश में विवाद के बावजूद TISS के छात्रों ने शनिवार को शाम करीब 7 बजे अपने लैपटॉप और फोन पर यह डॉक्यूमेंट्री देखी। संस्थान की ओर से स्क्रीनिंग न करने का नोटिस जारी किया गया था और स्क्रीनिंग की सूचना मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया, लेकिन छात्र संगठनों ने इसके बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जारी रखी।
भारत की केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि अमेरिका के वॉइस न्यूज के पत्रकार अंगद सिंह को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारक होने के बावजूद काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वॉइस न्यूज के पत्रकार अंगद सिंह को अगस्त 2022 में दिल्ली में उतरने के 3 घंटे के अंदर वापस भेज दिया गया था और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारक होने के बावजूद उनके भारत आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सरकार के अनुसार उन्हें पत्रकारिता वीजा प्राप्त करने से संबंधित आवेदनों में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और कुछ मापदंडों का उल्लंघन करने के चलते काली सूची में डाला गया है। अदालत ने केंद्र सरकार के वकील को इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि क्या याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
तालिबान के वरिष्ठ नेता ने पाकिस्तान के संविधान और कानूनों को गैर इस्लामी बताया है। अफगानिस्तान की शफकना न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को पाकिस्तान तहरीक तालिबान ने अफगानिस्तान में तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला हैबतुल्ला आखुनजादे की उर्दू सबटाइटल के साथ एक क्लिप जारी की है। इस क्लिप में मुल्ला हैबतुल्ला पाकिस्तान के एक मशहूर मौलवी मुफ्ती तकी उस्मानी की किताब का हवाला देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में आज भी ब्रिटिश कानून लागू हैं। इसके आगे तालिबान के नेता कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर मुजाहिदीन कमज़ोर पड़ गए तो देश में वही कानून लागू हो जाएंगे जो आज पाकिस्तान में लागू हैं। दरअसल तालिबान नेता अपने लड़ाकों और अफगान जनता को पाकिस्तान में लागू लोकतांत्रिक व्यवस्था से डरा रहे हैं।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक हाई स्पीड बस ब्रिज से टकरा गई। भयानक टक्कर की वजह से बस खाई में जा गिरी और आग लग गई। बस में 48 यात्री सवार थे जिसमें 39 यात्रियों की मौत हो गई। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण सड़क हादसा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 48 यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी जिसमें 39 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा बलूचिस्तान के लासबेला में हुआ है जहां बस क्वेटा से कराची जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार की वजह से ब्रिज से टकरा गई और आग लग गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में लासबेला के असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अंजुम के हवाले से बताया गया है कि क्वेटा से कराची जा रही बस में 48 यात्री सवार थे। बस काफी स्पीड में थी जिससे ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस ब्रिज से पिलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस में आग लग गई और खाई में जा गिरी। बस की गति तेज होने की वजह से लासबेला के पास यू टर्न लेते समय बस ब्रिज के पिलर से जा टकरा गई। बस बाद में एक खाई में गिरी और फिर उसमें आग लग गई।
प्रवेश परीक्षा में लड़कियों की भागीदारी पर तालिबान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के पीछे का कारण सामने आ गया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मुल्ला नेता मोहम्मद नदीम ने कहा है कि प्रवेश परीक्षा में लड़कियों के शामिल होने की अनुमति को न दी जाने की मुख्य वजह लड़कों के साथ एक साथ परीक्षा देना है। बता दें कि नेता मोहम्मद नदीम ने अफगानिस्तान के निजी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंधों की नीतियों को और कड़ा करते हुए यह आदेश दिया है। अगले महीने छात्राओं को प्रवेश पत्रिका देने की अनुमति न दी जाए। ये आदेश अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री ने उन सभी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को पत्र के माध्यम से दिया है जहां फरवरी के अंत में प्रवेश परीक्षा होनी है।
इसी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रेडियो हिंदी तेहरान से समाप्त होते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हम सर्वोच्च नेता की नजर में जनरल शहीद कासिम सुलेमानी का व्यक्तित्व कैसा था, इस पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद मेहदी का सलाम, स्वीकार कीजिए। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने काम में निष्ठा को विभूति और बरकत का कारण करार दिया और शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के रास्ते को एक पंथ और एक पाठ सीखने का केंद्र करार दिया। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों और मेरे नमाजी भाई बहनों, निष्ठा में बहुत बरकत है। जहाँ भी निष्ठा होगी वहाँ अल्लाह अपने निष्ठावान बंदों को बरकत देता है। काम में बरकत होती है, काम आगे बढ़ता है और काम में तरक्की होती है। काम इस तरह से अंजाम पाता है जिसका प्रभाव हर पर पड़ता है और उस काम की बरकतें लोगों के बीच बाकी रहती हैं। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि ये सभी निष्ठा की निशानियां और चिन्ह हैं। इस निष्ठा का परिणाम लोगों का प्रेम और उनकी निष्ठा होती है। ये लोगों का रोना और उनके आंसू होते हैं। यही लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति और यही जनता की क्रांतिकारी भावना का पुनर्जीवित होना है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि हमको इस घटना को और भी मजबूत करना चाहिए, इसके महत्व को उजागर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस घटना की कीमत और इसका अनुमान कितना है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि जब ये चीज व्यवहारिक हो जाए कि हम अपने प्रिय शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और अपने प्यारे शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस को एक व्यक्ति की नज़र से न देखें बल्कि इनको एक पंथ और एक नजरिए व एक विचारधारा के रूप में देखें। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि हमें अपने प्रिय जनरल कासिम सुलेमानी को एक पंथ की तरह, एक रास्ते की तरह, एक विचारधारा और एक नजरिए की तरह इस नज़र से देखना चाहिए, तब जाकर इस मामले और इस विषय का महत्व हम पर स्पष्ट होगा, इस मुद्दे की अहमियत और उसका स्थान खुलकर सामने आएगा। ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि इस्लामी क्रांति संरक्षक बल सिपाही पासदारान की कुद्स ब्रिगेड को केवल एक संस्था या संगठन के रूप में न देखें बल्कि ये एक इंसान व संगठन के रूप में देखें जिसमें महान व अपार इंसानी भावनाएं पाई जाती हैं। तो श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम, स्वीकार कीजिए। ईरान में विफल ड्रोन हमला, नेटो में स्वीडन की सदस्यता खटाई में तथा राहुल गांधी की पदयात्रा अपने अंतिम चरण में। दोस्तों, इन विषयों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस्लामी गणतंत्र ईरान के शत्रु देश में वैज्ञानिक विकास और प्रगति के मार्ग में बाधाएं डालने के उद्देश्य से नित नए षड्यंत्रों को व्यवहारिक बनाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने शनिवार की रात एक विफल कार्रवाई की। विस्तार से बता रहे हैं अख्तर अब्बास।
ईरान के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि शनिवार की शाम इस्फहान में रक्षा मंत्रालय के कारखानों में से एक पर छोटे ड्रोन विमानों द्वारा असफल हमला किया गया, जिनमें से एक परिसर की वायु रक्षा प्रणाली और दो अन्य विमान रक्षा सिस्टम द्वारा मार गिराया गया। इस्फहान के रक्षा उद्योगों में से एक में विस्फोट की घटना के बाद ईरान के रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये असफल हमला 28 जनवरी 2023 की शाम को हुआ था। हालांकि इस असफल हमले का अधिक विवरण अभी सामने नहीं आ सका है, लेकिन ऐसे हमले अतीत में भी हुए हैं और ईरान की सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों के आसपास कई विस्फोट हुए हैं। इन सभी हमलों और विध्वंसक कार्रवाइयों में दुश्मनों की रक्षा और परमाणु उद्योगों में ईरान की बढ़ती प्रगति को रोकने और ईरान को अधिक विशिष्टताएं देने और अपनी रक्षा नीतियों से पीछे हटने पर मजबूर करने की कोशिश है। वास्तव में ईरान पर दबाव बढ़ाने और उसे अलग थलग करने की नीति का पालन करने वाले अमरीका और ज़ायनी शासन सहित दुश्मनों ने हालिया वर्षों में ईरान के रक्षा और परमाणु कार्यक्रमों को रोकने या विलंबित करने के लिए आतंक और विध्वंसक कार्रवाइयों का इस्तेमाल किया है। बमबारी, साइबर हमले और ईरान के प्रतिरोध के कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं दुश्मनों की कार्रवाइयों में से हैं, जिनका उद्देश्य वैज्ञानिक और रक्षा प्रगति के मार्ग में बाधाएं पैदा करना और साथ ही ईरान की बढ़ती शक्ति को कम करना है। उदाहरण के लिए ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद स्वतंत्र समाचार पत्रों ने अपने विश्लेषण में लिखा कि ईरान में हालिया टारगेट किलिंग की घटनाएं MI6 और CIA सहित अपने पश्चिमी समकक्षों के साथ इसराइली खुफिया एजेंसी के अंतहीन प्रयासों का हिस्सा हैं, जिनका मकसद ईरान को अपने परमाणु लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकना है। जाहिर सी बात है, तमाम कार्रवाइयों और अपराधों के बावजूद जो दुश्मनों ने ईरान की रक्षा और परमाणु शक्ति पर हमला करने के लिए किए हैं, लेकिन इन साजिशों से ईरान की योजनाओं में कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। विशेष रूप से ईरान की सैन्य हार्डवेयर और रक्षा प्रणालियों की महत्वपूर्ण सिस्टम में आत्मनिर्भरता हुई है और इसका परिणाम यह निकला कि ईरान क्रूज, मिसाइल, ड्रोन और रक्षा जैसे विभिन्न सैन्य क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक माना जाने लगा। इसी आधार पर ईरान के रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात पर जोर दिया है कि वो ईरान के महान राष्ट्र को यह विश्वास दिलाता है कि हमारे केंद्र शक्ति, मजबूती और सुरक्षा पैदा करने के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे और पूरी गंभीरता के साथ इस मार्ग को जारी रखेंगे और ये कृत्य किसी भी तरह से हमारी प्रगति में बाधा नहीं बन सकते।
तुर्की की नाराजगी के बाद अब नेटो में स्वीडन की सदस्यता का मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। एक समीक्षा लेकर उपस्थित हैं सैयद मीसम।
स्वीडिश विदेश मंत्री टोबियास बिलेस्ट्रॉम का कहना है कि पवित्र कुरान के अनादर के बाद नाटो सदस्यता प्रक्रिया के संबंध में तुर्की और स्वीडन के बीच बातचीत को निलंबित कर दिया गया है। स्वीडिश विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वीडन की सरकार तुर्की के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनके देश की नाटो सदस्यता प्रक्रिया गर्मी के मौसम में पूरी हो जाएगी। इस बीच तुर्की विरोधी प्रदर्शनों और इस्लाम विरोधी कार्रवाइयों पर तुर्की द्वारा स्वीडन की कड़ी आलोचना के कारण फिनलैंड ने पहली बार घोषणा की है कि वो स्वीडन के बिना ही नाटो में शामिल होने का प्रयास करेगा। फिनलैंड की इस घोषणा से ऐसा लगता है कि वो नाटो सदस्यता के लिए स्टॉकहोम से अलग रास्ता अपना रहा है। खासकर स्वीडन और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव और स्वीडन के भड़काऊ कदमों ने नाटो में स्वीडन की सदस्यता के लिए अंकारा के सकारात्मक वोट की संभावना को कम कर दिया है। स्वीडन और फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद 2022 में नाटो में शामिल होने का अनुरोध किया था, जिसके लिए इस पश्चिमी सैन्य संगठन के सभी 30 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। तुर्की भी नाटो का सदस्य है, इसलिए इन दोनों देशों की सदस्यता के लिए उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ناٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی سدسیتا کے لیے ترکیے نے کئی شرطیں رکھی تھیں. انکارا نے وشیش روپ سے ان کردوں کے خلاف کڑی کارروائی کی مانگ کی تھی جو ان دیشوں میں ترکیے کے ورودھ گتی ودھیوں میں شامل ہیں. ناٹو سدسیتا کے لیے تیز اور آسان پرکریا کے بارے میں سویڈن اور فن لینڈ کی شروعاتی دھارنا کے وپریت اب یہ اسپشٹ ہو گیا ہے کہ ترکیے کا گمبھیر ورودھ ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے. وشیش روپ سے پچھلے دنوں ایک پردرشن کے دوران اسٹاک ہوم میں ترک دوتاواس کے سامنے قرآن کو جلائے جانے کی گھٹنا کے بعد متبھید اور بڑھ گئے ہیں. اس گھٹنا کے بعد ترکیے نے سویڈن کے ساتھ جاری بات چیت کی پرکریا کو روک دیا تھا. سویڈش سرکار نے دونوں دیشوں کے بیچ سمبندوں پر اس آکرامک اور اپمان جنک قدم کے پربھاؤ کو کم کرنے کی ایک کوشش بھی کی. سویڈش پردھان منتری نے اس اپمان جنک کرتیہ کے بعد کہا تھا کہ وہ ابھیویکتی کی سوتنترتا کا سمرتھن کرتے ہیں لیکن دھارمک پوتر پستکوں کو جلانا ایک بہت ہی اپمان جنک کر رہے. لیکن ان کے اس بیان سے صاف ظاہر ہو گیا کہ سویڈن سرکار ابھیویکتی کی سوتنترتا کے بہانے اسلام ورودھی کرتیوں اور اسلامو فوبیا کو بڑھاوا دینا جاری رکھے گی.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کارکرم راجنیتک چرچا.
اور شوتاؤ اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا. کافی شہرت حاصل کرنے کے بعد راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا اب اپنے انتم چرن میں سری نگر پہنچ چکی ہے. اس یاترا کا سماپن 30 جنوری کو ہونے جا رہا ہے. سری نگر سے سپتے محمد حسن کی رپورٹ.
کانگریس نیتا راہل گاندھی کے ادھیکشتا میں پچھلے ورش 7 ستمبر کو تامل ناڈو کی کنیا کماری سے آرمبھ ہونے والی بھارت جوڑو یاترا اپنے آخری چرن میں سری نگر پہنچی اور شانتی پورک ڈھنگ سے سماپت ہوئی. بھارت کے وبھن راجیوں سے ہوتے ہوئے اور 4,000 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ یاترا سری نگر پہنچی. جس میں لوگوں کی ایک بڑی سنکھیا نے بھاگ لیا جس میں جموں کشمیر کے دو بھوتپورو مکھیہ منتری بھی شامل ہے. اس یاترا کا لکش دیش بھر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے راہ ہموار کرنا بتایا گیا. کانگریس نے یہ آروپ بھی لگایا ہے کہ جو موجودہ پرشاسن ہے اس نے پورے دیش میں ان کے انوسار آپسی بھائی چارے کو کافی نقصان پہنچایا ہے جس کا توڑ کرنے کے لیے راہل گاندھی نے اس یاترا کا آیوجن کیا تھا. اتوار کی صبح جب راہل گاندھی کی ادھیکشتا میں یاترا جب سری نگر پہنچی تو کانگریس کے دگج نیتاؤں نے راحت کی سانس لی. اس اوسر پر راہل گاندھی نے سری نگر کے کیندر میں استھت لال چوک میں گھنٹہ گھر پر بھارت کا پرچم بھی لہرایا اور بھارت کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا. وبھن نیتاؤں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو یاترا آرمبھ ہوئی ہے اس نے اپنا لکش پراپت کیا ہے. یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ بھارت جوڑو یاترا کے ہوتے ہوئے کل یعنی سوموار کو سری نگر کے ایک اسٹیڈیم میں جن سبھا بھی ہونے جاری ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ وشیش روپ سے راہل گاندھی بھاشن دیں گے. سپتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستو ابھی آپ کارکرم راجنیتک چرچا سن رہے تھے ہمارے ساتھی قائم رضوی سے۔ اب آپ کی سیوا میں جو کارکرم پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے قرآن ایشوریہ چمتکار۔
قرآن ایشوریہ چمتکار۔
پریہ شروتاؤں، کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار کی ایک انیہ کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ آئیے پہلے سورہ انبیاء کی آیت کرمانک 95 کی تلاوت سنیں۔
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون،
اور جس بستی کو ہم نے ونشٹ کر دیا اس کے لوگوں کے لیے اسمبھو ہے کہ وہ سنسار میں واپس لوٹیں، وہ کدابی واپس نہ لوٹیں گے۔
اس سے پہلے کی آیتوں میں ان بھلے کرم کرنے والے مومنوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایشور ان کے کرموں کو پرلے تک انکت کرتا رہتا ہے اور ان کے کرموں کا سمپورن پرتیفل دیا جاتا ہے۔ یہ آیت وپکشی گٹ کی اور سنکیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سنسار میں پاپوں کے کارن دنڈ میں گرست ہونے والے کافر اور اتیاچاری مرنے کے بعد اس بات کی کامنا کریں گے کہ وہ سنسار میں پنہ لوٹ جائیں، کنتو کافروں کی اور ایشوریہ دیا کی واپسی ورجت ہو چکی ہے اور اس پرکار کی کامناؤں کا کوئی لابھ نہیں ہوگا۔
پاپیوں کی اس کامنا کے سمبندھ میں قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں کہا گیا ہے کہ جب وہ مرتیو کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو ایشور سے آگرہ کریں گے کہ وہ انہیں سنسار میں لوٹا دے تاکہ وہ ان بھلے کرموں کی بھرپائی کر سکیں جنہیں انہوں نے انجام نہیں دیا تھا، کنتو انہیں یہی اتر ملے گا کہ یہ بات سمبھو نہیں ہے۔
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ جب تک ہم جیوت ہیں بھلے کرم کرنے اور پچھلی غلطیوں کی کھتی پورتی کا پریاس کرتے رہیں، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی افسر نہیں ملے گا۔
لوک پرلوک کی ویوستھا ایک اتینت ٹھوس ایوم ابھید ویوستھا ہے جس سے دور بھاگنا سمبھو نہیں ہے۔
آئیے اب سورہ انبیاء کی آیت کرمانک 96 اور 97 کی تلاوت سنیں۔
حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔
یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کے لیے مارگ کھول دیے جائیں اور وہ ہر اونچی جگہ سے نکل پڑیں اور آکرمن کرنے لگیں اور سچا وعدہ نکٹ آ جائے تو کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہمارا دربھاگیہ، ہم اس دن کی اور سے نشیت رہے بلکہ ہم ہی اتیاچاری تھے۔
اس سنسار کی سماپتی اور پرلے کے آرمبھ ہونے کا چن اس باندھ کا ٹوٹنا ہے جسے ذوالقرنین نے بنایا تھا اور اس کے مادھیم سے یاجوج و ماجوج نامک جاتی کے آکرمن کو روکا گیا تھا۔ سورہ کہف کی آیت کرمانک 98 اور 99 میں کہا گیا ہے کہ یہ جاتی انیہ کشیتروں پر آکرمن کر کے انہیں تباہ کر دیتی تھی، یہاں تک کہ ذوالقرنین نے ان کے کشیتر کے سامنے اسپات کی ایک بہت اونچی دیوار بنا کر ان کے آکرمن کو روک دیا۔ انہوں نے اس دیوار کا نرمان پورا ہونے پر کہا تھا کہ جب میرے پالنہار کا وعدہ پورا ہونے کا سمے نکٹ آئے گا تو یہ باندھ ٹوٹ جائے گا اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور سبھی لوگوں کو اکترت کر دیا جائے گا۔
یہ آیتیں بھی کہتی ہیں کہ سنسار کا سمے اسی پرکار سے گزرتا رہے گا، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نامک جاتی پورے وشو میں پھیل جائے گی اور اس جاتی کے لوگ ہر اونچے استھان سے تیزی سے گزر کر لوگوں پر آکرمن کرنے لگیں گے۔ سور پھونکے جانے اور سنسار کی سماپتی کی گھوشنا کے بعد کافر اس پرکار سے بھے و آتنک میں گرست ہوں گے کہ ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، گھمنڈ ایوم نشچیتنا کے پردے ہٹ جائیں گے اور وہ چلا چلا کر کہیں گے کہ کیوں ہم اس دن کی اور سے نشچیت تھے اور کیوں ہم نے پیغمبروں اور ایمان والوں کی باتوں کا پریہاس کیا تھا۔ اس پرکار وہ اپنے پاپوں کو سویکار کریں گے اور سوئم کو اتیاچاری بتائیں گے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ پاشوک جاتیوں کا آکرمن سنسار کی سماپتی اور پرلے کے آرمبھ کی نشانیوں میں سے ہے۔
ستیہ کے انکار اور کفر کا مکھیہ کارن نشچیتنا و انبھگیتا ہے اور پرلے کے دن کافر اس واستوکتا کو سویکار کریں گے کنتو تب کوئی لابھ نہیں ہوگا۔
آئیے اب سورہ انبیاء کی آیت کرمانک 98 اور 99 کی تلاوت سنیں۔
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔
نشچے ہی تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر اپاسنا کرتے ہو نرک کا ایندھن بنو گے اور اس میں پروشت ہوگے، یدی یہ مورتیاں پوجی ہوتی تو نرک میں پروشت نہ ہوتی کنتو وہ سب سدیو اس میں رہیں گے۔
جو لوگ پرلے میں اپنے کفر و اتیاچار کو سویکار کریں گے تو ان کی اس سویکاروکتی کا انہیں کوئی لابھ نہیں ہوگا اور وہ نرک میں جانے سے اور اس کے دنڈ میں گرست ہونے سے بچ نہیں پائیں گے، نہ کیول وہ بلکہ ان کے کالپنک دیوتا بھی نرک میں جائیں گے اور ایندھن کے ٹکڑوں کی بھانتی نرک کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔
پتھر و لکڑی کی نرجیو پرتیمائیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اور ان کی مکتی کا کوئی مارگ نہیں ہے، جبکہ انیکیشور وادی اس سنسار میں ان مورتیوں کی اس لیے اپاسنا کرتے تھے کہ وہ انہیں مکتی دلائیں گے اور ان کی سرکشا کریں گی۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ پاپیوں کا شریر نرک کی آگ کو اور ادھک بھڑکا دے گا۔
اتیاچاری لوگ اتنے مہتوہین ہوتے ہیں کہ پرلے کے دن ان کے ساتھ لکڑی و انیہ جڑ وستوں کی بھانتی ویوہار کیا جائے گا۔
دوستوں ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم قرآن ایشوریہ چمتکار، اور آج کی سبھا کے انت میں جو کاریکرم آپ کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے کاریکرم آج کل۔
آج کل
دوستو کاریکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کے کاریکرم میں ہم پرتیرودھ ساہتیہ کے لیے سلیمانی گلوبل پرسکار کے وشے پر چرچا کریں گے۔ مریم مہر دادی اور اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
दोस्तों, जो भी प्रतिरोध और डटे रहने की संस्कृति के बारे में समाचारों पर नजर रखता है तो वो कई सालों से जनरल शहीद सुलेमानी के नाम से अवगत होगा। इस अवार्ड का लक्ष्य सांस्कृतिक है और ये इस बात की कोशिश करता है कि विभिन्न इंसान की प्रवृत्ति और उससे निकली हुई इच्छाओं और साहित्य को एक नया रूप दे और दुनिया में पाई जाने वाली हर बुराई और बदी के मुकाबले में इसके विभिन्न अच्छे पहलुओं की पहचान करके कुछ लोगों को तैयार करें और बलिदान और डटे रहने की संस्कृति को पुनर्जीवित करें।
22 दिसंबर 2022 को लेबनान के सांस्कृतिक, कलात्मक और मीडिया संघ असफार लेबनान के हिजबुल्ला के प्रयासों और ईरान और लेबनान के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारियों के एक समूह की उपस्थिति से शहीद प्रतिरोध साहित्य के लिए लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमानी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड का कार्यक्रम लेबनान के रिसालत थिएटर में आयोजित हुआ। लेबनान की महिला सांसद एहाब हमादा के अनुसार इस पुरस्कार के दूसरे दौर में 11 देशों के कवियों और लेखकों के 300 से अधिक उपन्यासों, कविताओं, लघु कथाओं और पटकथाओं को 4 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा के लिए पेश किया गया। प्रतिरोध और डटे रहने ने साहित्य के इतिहास में हमेशा एक प्रमुख स्थान बना रखा है। ये कहा जा सकता है कि प्रतिरोध के साहित्य में उस प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक कार्य शामिल होते हैं जो टकराव और सामाजिक संघर्षों के क्षेत्र में जनता के जीवन के वर्तमान संदर्भ को जाहिर और प्रकट करते हैं।
विनम्रता और लोकप्रिय संस्कृति की विशेषताओं के साथ इस प्रकार की विनम्रता की श्रेणी और सामग्री वास्तव में सुधारवाद, स्थिरता, विरोध, टकराव और चुनौती के रूप में मूल्यों को अभिव्यक्ति और समाहित करती हैं। प्रतिरोध की जन्मस्थली घटनाओं के संदर्भ में होती है और ये आमतौर पर आंतरिक सरकार या विदेशी आक्रमण के अत्याचारों के खिलाफ लोगों के संघर्ष के रूप में एक गुट, वंश और राष्ट्र के बीच पैदा होती है। ये संस्कृति अपने व्यापक रूप में किसी विशेष पंथ के अनुयायियों के बीच उत्पन्न होती है। ये एक पंथ, धर्म या राष्ट्र के बीच पाया जाता है।
जिस प्रकार प्रतिरोध और डटे रहने की भावना सभी पक्षों, विशेष रूप से आम लोगों के समर्थन और उपस्थिति पर निर्भर करती है, प्रतिरोध और डटे रहने की संस्कृति भी तब पनपती है जब समाज के निचले वर्ग की संस्कृति इसे बनाने के लिए कार्रवाई करती है। मिसाल के तौर पर समाज और जीवन के संदर्भ में कविता लिखने वाले महान कवियों की तरह लोक साहित्य अपने सामान्य अर्थों में रक्षा या युद्ध और प्रतिरोध के दृष्टिकोण से उभरता है।
ईरान में प्रतिरोध का साहित्य इस्लामी क्रांति के बाद और ईरान के खिलाफ इराक द्वारा थोपे गए युद्ध की तबाही के साथ शुरू हुआ और चूंकि इस प्रतिरोध का ध्यान किसी भी उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को दूर करना और अत्याचार व अहंकार को स्वीकार न करना था, इसीलिए यह सीमा से परे चला गया और क्षेत्रीय और एक वैश्विक अभिव्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया।
जैसे ही सीरिया और इराक ने आतंकवादी गुट ISIS के अपराधों का सामना किया, प्रतिरोध का दायरा बढ़ गया और जनरल सुलेमानी की कमान में मुस्लिम मुजाहिदीन अद्वितीय बलिदान के साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े।
3 जनवरी 2020 की सुबह अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश से IRGC की कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, इराकी स्वयं सेवी बल हशदुशाबी के उप कमांडर जनरल अबू महदी अल मोहंदिस और उनके साथियों पर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमरीकी ड्रोन से हमला किया गया जिसमें ये सारे लोग शहीद हो गए।
प्रतिरोध के इन शहीदों और ईरान के IRGC के कुछ फोर्स के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की स्मृति को सम्मानित करने के लिए 2021 में प्रतिरोध साहित्य के लिए सुलेमानी ग्लोबल पुरस्कार शुरू किया गया था। ये प्रतियोगिता प्रतिरोध की धुरी में रचनात्मकता को बढ़ाने और इस्लामी दुनिया के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में बदलने और उन्हें मानवता की दुनिया की सबसे बड़ी चिंता में बदलने के लिए आयोजित की जाती है।
इस प्रतियोगिता का एक अन्य लक्ष्य सत्य की खोज के मूल्यों, मानवीय अच्छाई और सुंदरता को बढ़ावा देना और प्रतिबद्ध सांस्कृतिक जागरूकता के स्तर को मजबूत करना है, और साथ ही एक रचनात्मक मॉडल के माध्यम से प्रतिरोध की संस्कृति को फैलाने में मदद करना है। इसके अलावा मूल्यवान पुरस्कार सामग्री देकर रचनात्मकता की भावना को प्रोत्साहित करना इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता के आयोजन के लिए प्रस्तावित अन्य लक्ष्यों में से एक है।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने अल करीबी क्षेत्र में आयोजित प्रतिरोध साहित्य के लिए शहीद सुलेमानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के वितरण समारोह में दो भागों में भाषण दिया। पहले भाग में उन्होंने पवित्र कुरान की आयतों और इस्लाम के शुरुआती दिनों के शहीदों की शहादत और विशेषताओं के बारे में आने वाली हदीसों का जिक्र करते हुए कहा कि लेबनान में जीत हासिल करने वाले शहीदों, गज़ा में जीत हासिल करने वाले शहीदों और इराक में सफल हुए शहीदों ने अमरीकी अतिग्रहण और आईएसआईएस को करारी शिकस्त दी, और सीरिया में जो शहीद हुए उनमें से प्रत्येक का उनके परिवार, आसपास के लोगों, आसपास के वातावरण या देशों पर अपना प्रभाव पड़ा। लेकिन ऐसे शहीद भी हैं जिनके प्रभाव का दायरा पूरे इस्लामी समाज और दुनिया पर पड़ा है।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के महासचिव ने प्रतिरोध साहित्य के लिए सुलेमानी ग्लोबल पुरस्कार के वितरण कार्यक्रम में कहा कि आज जब हम हाज कासिम सुलेमानी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने स्थान और समय से परे हैं। वो न केवल इस्लामी उम्मा के शहीद हैं बल्कि पूरी दुनिया के शहीद हैं। जनरल कासिम सुलेमानी युद्ध में एक महान और अहम कमांडर थे जिन्होंने अफगानिस्तान में प्रवेश करने के बाद अमरीकी सेना को इस क्षेत्र पर कब्जा करने से रोक दिया।
सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अतिक्रमणकारियों ने खिलाफत सरकार और आईएसआईएस के माध्यम से क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिरोध की धुरी ने जिसे स्थापित करने में शहीद सुलेमानी ने प्रमुख भूमिका निभाई उनका सामना किया। इसके साथ ही शहीद सुलेमानी ने इस क्षेत्र में ज़ायनी शासन की साजिशों और योजनाओं को निष्प्रभावी बनाया। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी में सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसने उनके सहयोगियों को आत्मा दी और उनके दिल में डर का कोई स्थान नहीं था।
लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन के महासचिव ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आईएसआईएस के गठन जैसी अमरीकी योजनाएं बहुत खतरनाक थीं और इस योजना का विरोध करने वाले धुरी में कासिम सुलेमानी मौजूद थे और उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। उनका कहना था कि जनरल कासिम सुलेमानी ने ग्रेटर इसराइल परियोजना को भी पराजित कर दिया। इस मुद्दे में इसराइल को आज दीवार और कटीले तारों के पीछे छिपने पर मजबूर कर दिया और वो हार और निराशा से घिरा हुआ है।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मिसाल कायम करना और प्रेरणा देना हमारा कर्तव्य है। ऐसे शहीद नेता हर पीढ़ी और देश में चाहिए। शहीद कमांडरों की स्मृति को याद रखना हमारा कर्तव्य है। इमाम खामनेई ने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी से ज्यादा शहीद सुलेमानी दुश्मनों को डराते हैं। समारोह के अंत में प्रतिरोध साहित्य में सुलेमानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के दूसरे दौर के 12 विजेताओं के नामों का ऐलान किया गया और चयनित रचनाएं पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जाएंगी।
प्रतिरोध साहित्य में सुलेमानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के दूसरे संस्करण के कविता खंड के पहले विजेता मिस्र के जिया अल कियानी थे। उन्होंने अपनी उपस्थिति के बारे में कहा कि ऐसा कोई लेखक नहीं है जिसके पास लिखने के लिए कुछ ना हो जो प्रतिरोध से संबंधित ना हो, और यह पुरस्कार अरब दुनिया में एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो प्रतिरोध साहित्य से संबंधित है। प्रतिरोध साहित्य में सुलेमानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के दूसरे संस्करण के लघु कहानी अनुभाग के दूसरे उप विजेता ट्यूनेशिया के न्यायाधीश मोहम्मद गाजी हैं। लघु कथा खंड में लिबनान की हिला जाहिर हैं। उनका कहना था कि हमारा लक्ष्य अल्लाह के नाम पर जिहाद है और जिहाद के तरीकों में से एक कलम से जिहाद करना है।
प्रतिरोध साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय शहीद सुलेमानी पुरस्कार के आयोजकों का अनुमान है कि इस पुरस्कार की तीसरे चरण में भागीदारी दर का विस्तार विभिन्न भाषाओं में होगा, जिसकी घोषणा 4 महीने में की जाएगी। अंत में समारोह के सचिव ने कहा कि शहीद सुलेमानी प्रतिरोध का प्रतीक और उमंग बने रहेंगे, जो इसे योग्य हैं कि उनके बारे में कुछ शब्द कहे जाएं। उन्होंने भव्य पुरस्कार जीता और शहीद हो गए, और आज वे रचनाकारों को अपने पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और उनका पथ जारी है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। तो अगली सभा तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।